जय माँ। दूसरा ये प्रश्न है कि माता जी ने जो सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य का जो प्रकाश है वो एक रिफ्लेक्शन है। किस चीज का रिफ्लेक्शन है, क्या इसका पूरा अर्थ ये क्या हुआ? अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोई चीज जो एक मीडियम है उस पर कहीं और से कोई चीज आ रही है और फिर उसको आपको उसमें एक छवि दिखती है, जो छवि बनती है। जैसे हम कहते हैं ना, शीशे में मेरा रिफ्लेक्ट प्रतिबिंब आ रहा है, प्रतिबिंब का ये अर्थ है। यहाँ रिफ्लेक्शन उस सेंस नहीं कि प्रकाश आया और चला गया, वो एक टेक्निक है, लेकिन रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब है। तो ये सृष्टि चूंकि सबके पीछे प्लान एक ही है, एक ही सत्य है जो प्रकट कर रहा है अनेकों अनेकों रूप से, और अगर उसको हम ध्यान से देखें तो बहुत अद्भुत लगता है। हर चीज, पहाड़ हैं, वो पार्थिव जगत में अभीप्सा का प्रतिबिंब है, नदी है वो पार्थिव जगत में जीवन का प्रतीक है। इसलिए आप देखिए, जीवन कहाँ जन्मा? जल के अंदर जन्मा, सृष्टि वहां से प्रारंभ होती है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो स्टोरी हिरण्याक्ष की, देखिए कहानियों का एकदम नया अर्थ। पहले सबसे पहले क्या होता है, मत्स्य अवतार में पानी डुबा देता है, सक्सीड्स। एक छोटा सा इसको जल के प्रतिबिंब को भी ले लेते हैं, वाटर क्या करता है, डुबो देता है पृथ्वी को। देखा जाए तो जो भी जीवन हुआ था उसको समाप्त कर देता है, लेकिन वो फॉर्म डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके अंदर जो दिव्य तत्व है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो एज पर द स्टोरी, मत्स्य अवतार के रूप में भगवान आते हैं और वो ले जाते हैं बचा करके, किसी और भूमि पर नई सृष्टि होगी। फिर जल आता है, अब इस जल से जो संभावना है, पहले उसके अंदर संसार सागर कहा भी गया, उसके अंदर छिपियां उनको निकालने का की चेष्टा होती है। तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं ही उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं कश्यप के रूप में, और फिर सागर मंथन होता है, उसमें सारी संभावनाएं निकलती हैं और कालकूट निकलता, अमृत निकलता। तो एक प्रकार से वो ब्लूप्रिंट है, जब ये इवोल्यूशन होगा ना, क्या क्या निकलेगा सब उसमें है। असुर के पास क्या जाएगा, देवता के पास क्या जाएगा, अंत में अमृत तत्व का अधिकारी कौन होगा, जो विश्व मोहिनी का परित्याग करने को भी सक्षम है। विश्व मोहिनी यानी वो भी भगवान ही है। ब्यूटी ऑफ द स्टोरी इज दिस, श्री कृष्ण, श्री भगवान विष्णु ही विश्व मोहिनी बने, वही ये संसार है। इस संसार में जो कुछ हमको आकर्षित करता है, लेकिन हम उनसे बाहर का संबंध जोड़ सकते हैं या हम उनसे आंतरिक संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे शिखी ध्वज की कहानी जो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ी, कि शिखी ध्वज ने वही अपनी पत्नी के साथ केवल बाहर का संबंध जोड़ा, रूप का संबंध, लेकिन वही पत्नी आत्मलीन है। देखिए कितनी सुंदर कहानी है, शी इज अ रियलाइज्ड पर्सन। वो चाहता तो उनके साथ एक अलग संबंध जोड़ सकता था, ही कुड हैव सीन द डिवाइन इन हर, नहीं देखा उन्होंने जो भी। यही चीज हम देखते हैं श्री अरविंद और श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में। श्री रामकृष्ण परमहंस शारदा माँ को कहते हैं कि यू वॉन्ट टू बी द मदर ऑफ वन चाइल्ड, फ्यू चिल्ड्रेन और मदर ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कहते हैं मदर ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्हीं के चरणों में माँ। श्री अरविंद विवाह होता है, ना केवल उनकी संतान नहीं होती है किंतु किसी प्रकार का भी उनका भौतिक संबंध नहीं होता। ये श्री अरविंद का एक डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है। वो उनके साथ सतत वैसे ही संबंध जोड़ते हैं जैसे डिवाइन स्वयं शक्ति, और उनके पत्रों में भी है, क्या तुम मेरी शक्ति बनोगी, क्या तुम चलने को तैयार हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल श्रद्धा रखनी है, बाकी सब अपने आप होगा। खैर नियति, वो उनकी नियति नहीं थी, कम से कम उस जीवन में नहीं थी। फिर डिवाइन मदर आती हैं उनके साथ, उनका पूरा संबंध जो है डिवाइन मदर के साथ जो संबंध है वो संबंध है उनके साथ। तो हर चीज जीवन में प्रतिबिंबित करती है, किसी ना किसी हायर ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है। तो सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है सुप्रामेंटल ट्रुथ को. कैसे वो प्रतिबिंब करता है सुप्रामेंटल ट्रुथ? सुप्रामेंटल क्या है? ओमनी प्रेजेंट है. आप कहीं से भी चले जाओ, सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य किसकी तरफ देख रहा है? सूर्य कहेगा मैं सर्वत्र देख रहा हूं. और एक प्रकार से सर्वव्यापी है, हर चीज के अंदर उसकी रेज जा रही है. कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंच रही है. और सर्वशक्तिमान भी है. सुपरमाइंड की जो दो एट्रीब्यूट मेन है, ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसियंस. आप कहें कैसे सर्वशक्तिमान है? आप देखिए पूरी पृथ्वी पे, पृथ्वी निकलती कहां से? सूर्य से निकलती है. सारे ग्रह निकलते हैं उस जैसे जैसे घूमती है. पृथ्वी पे जीवन पूरा सूर्य के तापमान से संचालित होता है. वेरी फैसिनेटिंग. और सूर्य के तापमान से और पृथ्वी का सूर्य के साथ जो संबंध है, उसे ऋतुएं बदलती हैं. सूर्य के साथ पृथ्वी के संबंध से समुद्र ऊंचा होता है या गिरता है. और ये पूरा जो क्रम है, सूर्य बिना कुछ किए सब कुछ कर रहा है. इसी कहानी में, चूंकि हम लोग अवतारों की बात कर रहे थे, तो दूसरी कहानी तो कुर्म अवतार की हो गई. अब आप देखो तीसरी कहानी क्या है. फिर से जल आता है. कैसे आता है? अब धरती आ गई है. धरती कहां से आई है? एक्चुअली जल से निकली है. ये जो हम धरती पर करते ना, वो ओशियन हैज गिवन द लैंड लिटरली. तो ये अब कौन आ गया सीन पर? हिरण्याक्ष आ गया. कहता है मैं इसको तो डुबा के रहूंगा. क्यों? क्योंकि एक बार अब जल का जीवन शुरू हो जाएगा ना, तो इवोल्यूशन कहां तक पहुंचेगा उसको भी पता है, असुर को पता है. तो डुबाने की चेज और भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, विनाश करते हैं. फिर जीवन जब पृथ्वी पर आता है, फिर और अड़चने आती है. दशावतार की कहानी में पूरा सब कुछ दिखता है. तो सूर्य उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है. अब प्रतिबिंब है तो इसका क्या मतलब है? हम लोग जो सूर्य की पूजा करते हैं वो क्या व्यर्थ है? नहीं, यही ये ब्यूटी है सनातन धर्म की. आप किसी भी चीज से यदि उसके प्रतीक को समझ लें, तो उसके माध्यम से आप उसके सत्य को जा सकते हैं. एक जगह श्री अरविंद ने पासिंगली कहा भी है, किसी ने सुपरमाइंड के कंटेक्स्ट में पूछा कि क्या मैं सूर्य पर ध्यान कर सकता हूं, तो श्री अरविंद ने कहा यस यू कैन डू, इट रिप्रेजेंट्स द सुपरमेंटल ट्रुथ. ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, ये सूर्य को सृष्टि का केंद्र है. मतलब हमारे सोलर सिस्टम का तो अनेकों सूर्य हैं, अनेकों सब जगह जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है उस सूर्य के को केंद्र में रख के चलते हैं. अनेकों सूर्य हैं. अब एक इंटरेस्टिंग बात है, चूंकि सूर्य की बात आ गई है, तो थोड़ी सी सूर्य देव की और बढ़ा दी जाए. जब अर्जुन को श्री कृष्ण का विश्व रूप का दर्शन होता है, तो उसमें वो कहते हैं अनेक सूर्य. ये सब सूर्य किसके अंदर समाये हुए हैं? स्वयं श्री कृष्ण के अंदर. और सूर्य के जो पुत्र हैं, नहीं पड़ी, सूर्य के पुत्र का नाम क्या है? नहीं, वो तो धरती पर वो बिचारे तो मतलब बिचारे नहीं, पर सूर्य के जो पुत्र हैं वो यम हैं ओरिजिनल उसमें. तो सूर्य और छाया, सूर्य की जो पत्नी है वो संज्ञा है, लेकिन उनका ताप इतना तेज है कि वो कहती मैं आपसे मिलना है बहुत मुश्किल है, तो वो छाया को प्रस्तुत कर देती है. छाया के थ्रू जो संतान होती है वो यम होते हैं, जिनको सूर्य निष्कासित कर देते हैं धरती पर. धरती पर नहीं, गार्जियन ऑफ द अंडरवर्ल्ड कहते हैं वहां मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन तू छाया से उत्पन्न हुआ है, चला जा. अब देखो कहानी कितनी सांकेतिक है. तो हमारे जीवन में दो विधान चलते हैं. जब हम अंधकार में रहते हैं अज्ञान के, तो यम का विधान चलता है. वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द अंडरवर्ल्ड. अंडरवर्ल्ड लिटरली कहते हैं अंडरवर्ल्ड. उसमें पीड़ा सारी चीजें. और क्यों है वो? ताकि हम सीख करें हायर लाइट को. इसलिए है, ऐसा नहीं कि कोई भगवान हमको कष्ट देना चाहते हैं. फिर हम सूर्य के लिए तैयार होते हैं. तो दूसरा विधान है सूर्य का विधान. तो वी कैन बी आइदर अंडर द लॉ ऑफ इग्नोरेंस. लॉ ऑफ इग्नोरेंस इज पेन सफरिंग रिस्ट्रेंट. यम का एक अर्थ होता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते एक पॉइंट के बियॉन्ड. आपको वो देवत्व में भी बहुत ज्यादा नहीं जाने देंगे, ऑफकोर्स आपको असुरत्व की तरफ भी नहीं जाने देंगे. तो वो रिस्ट्रेनर है, यम का अर्थ यही है, पाश है उनका जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे. सूर्य आपको पूरा आकाश खोल देते हैं, वाइडनेस, इन्फिनिटी, आई ऑफ इन्फिनिटी. बीच में एक और श्रीमान है जो सूर्य से जुड़े हुए हैं, देवता, उनका नाम है शनि देव. तो सूर्य के पहले शनिवार आता है, सूर्य के बाद सोमवार आता है. शनिवार क्या है, शनि कौन है, शनिवार शनि कौन है, शनि देवता न्याय के देवता है. तो न्याय क्या करते हैं, आपके पूरे अकाउंट को बैलेंस करते हैं, आपकी बैलेंस शीट कहते हैं. अब सब क्लियर हो गया, नाउ यू कैन गो. आपकी जो सारे यहां पर बैलेंस शीट इस सेंस में नहीं है पाप पुण्य की बैलेंस शीट, पर जहां अभी आपके अंदर जो कुछ आपने सृष्टि में इंबैलेंसेस के कारण बने हैं, वो सब आपको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, सॉर्ट आउट होता है. ये अभी जो हम युग से गुजर रहे हैं, ये अभी शनि का काल, फिर सूर्य का काल पूरी तरह. इसके पहले यम का काल, अंधकार ही अंधकार. शनि का काल है इसलिए ये न्याय का योग है, हर पुराने पाप बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो समाज में हुए हों या व्यक्ति में हुए हों, सारे निकलेंगे. आपको उसको रिजॉल्व करना है, कैसे करोगे ये एक अलग बात है, वो एक लंबा विषय है. उसके बाद सूर्य का काल, वी आर रेडी फॉर द सुप्रामेंटल ट्रूथ. तो शनि आते हैं, बहुत सारी इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं उस डिवाइन लाइट, डिवाइन कॉन्शियसनेस का, डिवाइन ट्रूथ का. लेकिन हम लोगों के लिए आपको सूर्य की आराधना नहीं करनी है, क्योंकि हम तो उनके आराधक हैं जिनके अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि विष्णु, कोटि कोटि महेश, कोटि कोटि सूर्य विद्यमान है, जो सबकी जननी है. शेरविंद इसको सिंपल कर देते हैं हम लोगों के लिए, और डिवाइन मदर की ग्रेस है. कौन कर सकता है, कौन जा सकता है यम से बाहर निकल के शनि के द्वार से सूर्य तक, नहीं जा सकता. जटायु ने प्रयास किया था, जटायु और संपाति, संपाति ने प्रयास किया था, जल गया था. ये कहानियां वही संकेत है. हनुमान जी ने प्रयास किया था, उनको इंद्र ने आगे नहीं बढ़ने दिया, देवताओं ने नहीं आगे बढ़ने दिया, हालांकि वो शिव पुत्र हैं, वो सृष्टि के अंदर बाद में वो जाके उनसे दीक्षा लेते हैं, सूर्य से सीखते हैं काफी कुछ. तो जब हम किसी रिप्रेजेंटेशन को इस भाव से पूजा करते हैं, जैसे छठ पूजा होती है, कि यह उसका अधिष्ठाता देवता जो है वह स्वयं सूर्य देव, इसलिए देव. तो जब हम बाहरी फिजिकल सिंबल को मान करके ऑफरिंग करते हैं, तो वो द्वार बन जाता है टू कनेक्ट विद, यानी ये फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ मीडियम है. आप अगर जोड़ना चाहो तो एक पत्थर से जोड़ करके भगवान को पा सकते हैं. नहीं जुड़ना जानते हो तो सामने बहुत विशाल मूर्ति होगी या काला पत्थर होगा, सॉरी कुछ नहीं होगा आपके अंदर, क्योंकि आप जुड़ना नहीं जानते. जुड़ना चाहो तो आप नदी, पर्वत, सूर्य की उपासना, उसके बाद चंद्रमा, इन सब के माध्यम से जुड़ सकते हो. अब चूंकि हम लोगों ने सोम भी मेंशन कर दिया था, तो सोम कौन है, आनंद के देवता है. जब तक पूरी तरह सूर्य के प्रकाश में हम नहीं नहा लेते, पूरी तरह हमारे अंदर सारी अशुद्धियां नहीं चली जाती हैं, मिथ्यात्व नहीं खत्म हो जाता, तब तक आनंद के अधिकारी नहीं होते हम. और जब सब आनंद है तो सब मंगल में है. आगे की कहानी बाद में. ठीक है, जय माता.